सतभामा जी का भी ऐसा देखा जाता है, मां के द्वारा क्रोध करते हैं और क्रोध भाव में बैठ जाती है, ऐसा साधारण रूप में देखा जाता है। किंतु आज इनका तो हम दूसरा ही रूप देख रहे हैं, आज ये प्रकट रूप में अपने प्रति के प्रति क्रोध करके और उनके संगियों को पीट रही हैं, गाली दे रही हैं, ऐसा तो मान कभी तक त्रिभुवन में नहीं देखा गया। ये कैसा मान है? प्रभु कहे कह ब्रजेर मानेर प्रकार, स्वरूप कहे गोपी मान नदी सतधार। गोपियों का मान कैसा है इसके हजार उदाहरण, तो यहाँ पर गोपियों का आकार है, किंतु लक्ष्मी जी को कैसे ये मान हुआ ये प्रसंग का विषय है। गोपियों का मान का इनसे श्रेष्ठ बतलाया गया, इसीलिए उन्होंने बतलाया मान दो प्रकार का होता है गोपियों का, हेतुक और सहेतुक, मान दो प्रकार का। और उसमें भी मान में गोपियों के बहुत से प्रकार दिखाए गए, धीरा अधीरा, धीरा और अधीरा। उसका कुछ लक्षण ये बतलाया, धीरा पति के प्रति मान करने पर यदि पति आ रहे हैं तो उठ करके खड़ी हो जाएंगी और कुछ बोलेंगी नहीं, और यदि वो कुछ करते हैं तो साधारण रूप में कुछ उपेक्षित कुछ बातों को बात करके बस इतना ही। मुग्धा एक है वो रोने लग जाए और कुछ नहीं करेंगे, प्रत्युत्तर नहीं करेंगे, और धीरा धीरा क्या करेंगे, धीर भी है अधीर है, वो कुछ धीर है मधुर बातें तो कहेंगे किंतु कैसे कहेंगे, उल्टा उलाट करके कहेंगे, उल्टे पुल्टे के रूप में। हृदय को मुख मधुर वचन, हृदय में तो कोप है मुख से मधुर वचन, और यहाँ लक्ष्मी जी का क्या है, मधुर वचन भी नहीं है और ऊपर से को भी और प्रखर बातें भी कर रहे हैं, ये ब्रज से कुछ दूसरे प्रकार। किंतु ब्रज का मान ये होता है उसमें धीरा धीरा का भीतर से हृदय से को और मुख में मधुर वचन, प्रिय आलिंगते तबे करे आलिंगन, सरल व्यवहार करे माने पोषण, अधीरा निश्चुल वाक्य करती है और करें भक्षण। इस प्रकार से सबका ये वर्णन किया है। श्रीवास जी उनके भावों को देख करके हंस रहे हैं, आज हमारी लक्ष्मी जी की विजय है, जिनके पास में स्वर्ण के आभूषण है, जिनके फूल की मालाओं से अपना श्रृंगार करती है, हमारी लक्ष्मी जी को यह सहन नहीं हुआ जो कृष्ण के साथ में जाएं, इसलिए आकर के उनको तान भर्षण करती है हमारी लक्ष्मी जी। देखो लक्ष्मी जी का यह उनको शासन करना और उनको मारना पीटना बड़ा अच्छा लगा, हमारी लक्ष्मी जी का कितना ऐश्वर्य, आज उनको मार पीट रही है, उनसे दंड ले रही है, आज हमारी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य तो देखो, बैकुंठा भगवती नारायण की लक्ष्मी जी, और तुम्हारी गोपियों के पास में कुछ नहीं है फूलों के अतिरिक्त। सर्व दामोदर ने इसका उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया युवा के फूल कैसे हैं, श्रृंगार वृंदावन के पुष्प कैसे हैं, बैकुंठ के स्वर्ण और हीरे और चिंतामणियों से भी वहां के एक एक गाय काम धेनु है जो समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है, वहां पर श्रृंगार पर्व वहां के जो फूल होते हैं चिंता वो पारी वो पुष्प जो है किसके कल्प वृक्ष, उनके फूलों का प्रयोग गोपियां किसी काम में नहीं करती, वो क्या करती हैं, श्रृंगार के लिए पुष्पों को धारण करती है, चिंतामणि उनके पैर जगों में नुकड़ों का काम करते हैं, और ये आपके गले में शोभा देते हैं लक्ष्मी जी के, और वहां गोपियों की चरणों की शोभा को सेवा करते हैं, वो भी उनको नहीं पहनती है फूलों के ही पहनती है, इसलिए वृंदावन की कैसी महिमा है आप नहीं जानते हैं। महाप्रभु जी दोनों का अहंग और तरंग देख रहे हैं,
अंत में संत दामोदर की बातें ही श्रेष्ठ साबित हुई, महाप्रभु जी से प्रभावित हुए और फिर उसके संबंध में वर्णन किया। ये वृंदावन की माधुरी सहज माधुरी है, वहां पर पेड़ है कल्प वृक्ष, गाय है कामधेनु, सहज चलना ही नाट्य है, बोलना ही गान है,
पानी ही
अमृत है, त्वयम अमृतम मैंने दूध ही अमृत है, इस तरह से उसका वर्णन किया। हम लोग समय अनुसार उनका वर्णन करेंगे आज यहाँ तक।
हम लोग रथ यात्रा प्रसंग में प्रताप रुद्र जी के कृपा के ऊपर में कृपा महाप्रभु जी की भी वहां का प्रसंग हमने पाठ किया। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ गए थे
हीरा पंचमी।
कल हीरा पंचमी के संबंध में बताया गया, लक्ष्मी जी खोज रही हैं कृष्ण को और वो खोजने में उनको ऐसा मान हुआ कि रथ को तोड़ दिया, सब लोगों को बांध दिया, इतना क्रोध ये क्यों हुआ और लक्ष्मी जी को साथ कृष्ण क्यों नहीं ले गए। तो इसका उत्तर दिया कि वृंदावन की लीला में लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं, अधिकार न होने का कारण क्या है, वो अपने को ब्राह्मणी समझते हैं, वैकुंठाधिपति नारायण की प्रिया समझती हैं और ऐश्वर्य उनमें भाव है। जब तक कोई गोप गोपी नहीं होगा तब तक ब्रज लीला में किसी का अधिकार नहीं, चाहे पुरुष रूप में चाहे ब्रज का भाव होना चाहिए, गोप गोपियों का भाव। इसलिए अर्जुन कृष्ण के सखा थे किंतु उनको ब्रज का भाव नहीं, क्योंकि वो द्वारका से संबंधित और द्वारका जिसके वो सखा उनमें ऐश्वर्य भाव प्रधान होता है, क्षत्रिय अभिमान उनमें है, ऐसे लक्ष्मी जी का ब्राह्मणी अभिमान है, ब्रह्मा इत्यादि की उपास्या है, सबको वर देती है किंतु ब्रज का भाव उनमें नहीं है। मैं गोपी होकर के ब्रज में दूसरे गोपों के साथ मेरी शादी होगी और तब मैं कृष्ण की उपासना करूंगी, ये उनके लिए संभव है, इसलिए उनको ब्रज लीला में अधिकार नहीं है, ये प्रधान बात। उसी तरह से कोई ब्रज में भी जन्म लेकर के द्वारका के प्रति, द्वारकाधीश के प्रति, रुक्मिणी सत्यभामा के सेवा के प्रति जिसको यदि कुछ थोड़ी सी भी आदर या उसके प्रति आकृष्टि है तो उनको ब्रज भाव की प्राप्ति। यहां तक कि राधा कृष्ण की सेवा करने पर भी उनको ब्रज की प्राप्ति नहीं, राधा कृष्ण की सेवा भी करते हैं किंतु द्वारकाधीश के प्रति, द्वारका के प्रति, सत्यभामा के प्रति आदर की यदि दृष्टि है, दोनों एक साथ में चीज नहीं, इसलिए उनके लिए क्या होगा, जो राधा कृष्ण का भजन करते हैं तो उनको क्या गति होगी, किंतु उधर भी कुछ रुचि है, यदि रुचि है तब तो बरकत में उनका होगा, उनकी राशि बन करके या शरीर आपके साथ, और जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं किंतु वैधि मार्ग से करते हैं उनको क्या होगा,
गोलोक,
उसे द्वारका से भी नीचे
गोलोक,
गोलोक में स्वकीय भाव में उनकी सेवा, जिनको राधा कृष्ण में प्रीति है भजन करते हैं और ब्रज के भावों के अनुसार में उनके अधीन होकर के काम करते हैं, भजन करते हैं, तो उनको ब्रज भाव की सखाओं के अंतर्गत होने पर सखाओं जैसा तो सोदानंद जी के अनुगत्य में भजन करने पर वात्सल्य भाव जो लोग इन सब को छोड़ करके गोपियों के शुद्ध अनुगत्य में भजन करते हैं, तो जिस गोपी के अधिक अनुगत होकर के भजन करेंगे ठीक वैसे ही उनको इसलिए श्रुतियों के लिए देखा जाता है, दंडकारण्य के महर्षियों के लिए देखा जाता है। और एक दो जन्म में ये सब सिद्धि नहीं होती, कल्प लग गया उनके लिए, श्रुतियों के लिए और दंडकारण्य वासियों के लिए। तो हम लोगों की क्या दशा है और किस कब साधन होगा, कैसे साधन, यदि अंततः लोभ भी थोड़ा सा हो जाता है तो बीज हो गया। अब इस बीज को अंकुरित करने के लिए रूप और अवनाथ की तरह में साधन भजन करते 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 10-20 हो सकता है कि जन्म जाएंगे, और जब फिर धीरे 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 वैसे ही वैराग्य, वैसे ही प्यार और वैसे ही निष्ठा होगी, भजन में निष्ठा, फिर भजनीय में निष्ठा, फिर धीरे 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 साधारण चीज नहीं। रथ यात्रा का प्रसंग इसे ऐसे व्यक्तियों के लिए उपकार के लिए यह है। तो संदास गोस्वामी ने चैतन्य चैतन सभी ऋषि को हरांग भजन के उद्देश्य करके ये लिखा है, इसमें वैधि मुक्ति की बात नहीं है। प्रारंभ से जहाँ पर है रास रसारंभी वंशी भट स्थित कर्षण बेन स्वनई गोपी गोपी नाथ न, ये वैधि भक्ति का है प्रसंग ना क्या है, इसलिए प्रारंभ से हम चलते हैं उनका एक उद्देश्य, उद्देश्य दे दिया यही गोपी गोपीनाथ, और उसी को प्रसंग अनुसार में हम प्रारंभ से कैसे चल सकते हैं, धीरे 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 भक्तों का चरित्र दिया, तरह तरह के उपाख्यान दिए, भक्तिरसम सिंधु का वो प्रसंग लाए वैदिक भक्ति इत्यादि का, किंतु उद्देश्य सब समय उनका किसी भी प्रसंग में देखो, रामानंद के प्रसंग में देखो, अंत में कहां लेकर के जाते हैं, आरंभ किया वर्णाश्रम धर्म से, वैदिक भक्ति से भी नीचे, वर्णाश्रम धर्म जो है ये वैदिक भक्ति के अंतर्गत नहीं,
मार्ग संख्या हमारे लिए अत्यंत निम्न स्थिति,
निम्न स्थिति, और यहां से उठा करके तो फिर ले गए इधर इधर आ जाओ, हमारी काम को सुनो बच्चे और समझना,
संत दास
मन दे करके सुन और तुमसे पीछे नहीं। रूप गोस्वामी का उपाख्यान लिया है, कोटि कोटि जगत में जीव है, चार प्रकार के जीव हैं, उद्भिज और कौन कौन से भी बताया है, जड़ है, जंगम है, खावर जंगम इत्यादि, और उसमें भी यह सब बताया, उसमें से श्रेष्ठ पशु उनसे भी श्रेष्ठ धीरे धीरे मनुष्य को लिया है। मनुष्य जाति अत्यंत दुर्लभ इस जगत में, बहुत कम है, कम कितना कितना और फर्क है, एक ब्रह्मांड में और लाखों ब्रह्मांड भरे पड़े, उसमें से भगवत भक्ति संपन्न जीव बहुत दुर्लभ, कम है, बहुत शुद्ध रूप, उन लोगों में से नारायण पारायण बहुत दुर्लभ, नारायण पारायण में से बहुत कम है जो कृष्ण पारायण, कृष्ण पारायण में भी एकांती कृष्ण पारायण बहुत दुर्लभ है, उनमें से भी कृष्ण में साधारण रूप में ये तीनों को मिला करके ब्रज द्वारका और मथुरा और वो लोग सब मिला करके ऐसे भक्त लोग हैं, वो भी बहुत, उनमें से शुद्ध ब्रज के भाव को ग्रहण करने वाले अत्यंत दुर्लभता है, उन लोगों में से दास्य का भाव रखने वाले और कम, उन लोगों में से भी खूब कम है जो सख्य वाले, उनसे भी बहुत कम है बिरले वाले जो पहुंच गए पास, उन लोगों में से कोई एक बिरले हैं जो वहां पर पहुंचे, अंत में वो कैसे होगा, गोपी अनुरक्त बिना इसलिए इसको अंत में उठा ले, सनातन गोस्वामी का उपाख्यान लेगा एकदम प्रारंभ से आरंभ किया, जिले स्वरूप
यहाँ से आरम्भ किया और अंत में कहाँ ले गए? पहले ले गए फिर संबंध क्या कृष्ण का तत्व, जीव का तत्व, माया का तत्व, संसार का तत्व, ये सब मिला है बतलाया,
फिर ऐश्वर्य माधुर्य
ये सब कुछ ले आए। इसके बाद में ले आए ये संबंध ज्ञान, ये सब कृष्ण के संबंध में, नारायण के संबंध में 24 प्रकार के
अवतार तो
अवतार और काय व्यूह इत्यादि के संबंध में बताए और अंत में बताए इन सबसे कृष्ण का वैशिष्ट्य। कृष्ण है अंशी और ये है कृष्ण है अवतारी और बाकी सब है
अवतार,
इसलिए कृष्ण ही अवतय ज्ञान और तत्व, इनसे बढ़कर के और कुछ तत्व। अच्छा, कृष्ण का भजन भी कैसे होता है, कितने प्रकार के भक्त कैसे करते हैं, बृहद भगवत इत्यादि में दिखलाया, इसमें भी दिखलाया और अंत में गोपियों के भाव को सर्वश्रेष्ठ वहां पर भी और उनका कैसे भजन होता है, कैसे रखा उनका भजन होता है वहां पर भी अंत में रथ यात्रा का प्रसंग आरम्भ किया। रथ यात्रा में बड़ा कौतूहल है, रथ जाएगा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा 3 रथ बने हैं और उसमें कैसे चढ़ा रहे हैं जगन्नाथ जी को, ये सब देखना ना इनका प्रधान तत्व तो नहीं है। गुप्ती माध्यम से आरम्भ किया और अगर जाता मिला लाखों लोग उसको रस्सी पकड़ करके खींच करके चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है ये सब प्रसंग, किन्तु दूरदर्शी उसमें क्या है
सेवा पर,
उसमें दूरदर्शी क्या है, गोपियां कृष्ण को अपने हृदय रूपी रथ में रख करके ब्रज में लाए, ये उसका दूरदर्शी है। बिना गोपियों के कृष्ण उस रथ में चढ़ करके ब्रज में आएंगे ये सब, कोई भी सखा रथ को खींचने आया कि नहीं ये देखो, कोई भी भैया वहां पर बात्सल्य वाले उस रथ को में हाथ में रस्सी पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कौन पकड़ा, महाप्रभु जी देख रहे हैं क्या, बस गोपियां रथ को खींच रही हैं और कोई खींचे ही नहीं गया, क्योंकि रथ भी गोपियों के हृदय का है, उसको कौन
गोपियां पुरुष बने हुए हैं,
पुरुष हो चाहे जैसे भी हो, महाप्रभु जी देख रहे हैं, महाप्रभु जी की भावना देखो जी उसमें क्या है। इसलिए रथ यात्रा प्रसंग में भी बलि भक्ति का एक धरातल में बस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उसको दिया, किंतु बिना इसके होगा नहीं।
माधुरी जी कादम्बिनी में कहा है कि बलि भक्ति का जाति और प्रमाण के भेद से भाव और रागानुग भक्ति का जाति और प्रमाण के भेद से
भाव, मैंने बलि भक्ति रागानुगम में भी बलि भक्ति है रहेगा किंतु भाव उसका, बिना बलि भक्ति के रागानुग होगा नहीं, संभव नहीं, किंतु उसका उद्देश्य होना चाहिए ऐसा। आप हम लोग कुरुक्षेत्र के प्रसंग पर चल रहे हैं, मैंने जहां भी जो प्रसंग है केवल चैतन्य चरितामृत नहीं, हमारे गोसाइयों का कोई भी ग्रंथ लो, जी गोस्वामी का सत संदर्भ तत्व संदर्भ में उन्होंने क्या दिखलाया, ये सब तत्वों का विश्लेषण, तत्वों का विश्लेषण करके फिर अंत में ले गए द्वितीय विषय में परमात्मा भगवत संदर्भ में, ब्रह्म जो ज्योति में जो लोग मिलते हैं ये क्या चीज है और जीव के साथ में उसका क्या संबंध है, फिर परमात्मा के साथ में जीव का क्या संबंध है, फिर कृष्ण के साथ में जीव का क्या संबंध है, फिर भक्ति किसको कहते हैं और उसमें भी कृष्ण भक्ति किसको कहते हैं और उसमें भक्ति का प्रभाव पड़ता है, फिर इसके बाद में आए प्रति संदर्भ में क्या दिया, दस सख्य बात्सल्य का देते हुए अंत में
मधुरी न समाप्त
कैसे हो, गोपियों का भाव दिया बस, खूब ध्यान से सुनो, यदि आंख बंद कर देगा तो तुम्हारा हृदय बंद हो जाएगा, तो एक अक्षर भी सुनाई नहीं पड़ेगा, तन करके बैठो सुनो अच्छी तरह से मन से, तब तो होगा नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए अब रक्त का प्रसंग, कल तो खैचा रहा रस्सी टूट गई थी, रस्सी टूट गई, महाप्रभु जी ने कहा कि देखो भाई रस्सी पुरानी हो गई है, बासु को गुणराज खान को कहा ऐसी मोटी रस्सी नहीं गया
हर साल,
हर साल नहीं जानी है तो पुरानी टूटने से हजारों आदमियों को मरने की संभावना है, हजारों आदमी पकड़ करके खींच रहे हैं और रस्सी जल्दी टूट गई तो क्या हुआ, इसलिए तुम नई रस्सी प्रत्येक बार
तो इतना भारी रस्सी कैसे लाएंगे, गाड़ी तो चाहिए
बैलगाड़ी, गाड़ी कैसे उस समय की व्यवस्था थी जो ले आए, प्रति वर्ष लाते थे, जब तक वो थे महाप्रभु थे तब तक वो आ जाते। इस तरह से फिर महाप्रभु जी रथ को खेच रहे हैं, खेचवा रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं, करेंगे से महाप्रभु जी ये कर रहे हैं, उनकी भावना क्या है, तो वो उसको बतला रहे हैं। श्लोक को पढ़ रहे हैं जो कौमार है और कहते ये श्लोक हमने पहले व्याख्यान हुआ, हमने भी थोड़े से संक्षेप में इसका अर्थ बताया है। पूर्वी जय क्षेत्र कुरुक्षेत्र सब गोपीगण ये गोपीगण रजत का प्रसंग में और कोई कोई भी रथ में जो खेच रहा है कोई भी पुरुष नहीं खेच रहा है, सब गोपियां खेच रही है। पूर्व जैसे कुरुक्षेत्र सब गोपीगण कृष्ण दर्शन पाइया आनंदित मन, नंद बाबा का प्रसंग नहीं लाया, सखाओं का गए थे कि नहीं गए थे, सभी लोग गए हैं, बलदेव जी गए हैं, सुभद्रा और सब लोग गए हैं, ब्रज के सभी लोग, किंतु कृष्ण दर्शन पाइया आनंदित मन कौन गोपिया और हमको आनंद है किंतु विशेष किसको आनंद है, उन गोपियों को ही सबसे विशेष आनंद, जिसके हृदय में जितना ही अधिक प्रेम होगा उसी को ही आनंद, जिसके हृदय में जितनी अधिक श्रद्धा होगी ये उसको उतना ही अच्छा सुनने में लगेगा, श्रवण भी कीर्तन भी सभी, जिसके हृदय में प्रेम अथवा मान प्रारंभिक स्थिति में श्रद्धा नहीं है वो लोग प्रश्न करेंगे भाई ये जो नगर संकीर्तन हम लोग कर रहे हैं इससे क्या लाभ है, बेकार का फालतू, इतना परिश्रम करने की हमें क्या जरूरत है, दस मिनट बोलेंगे इधर उधर बैठ करके कीर्तन करेंगे उनको मन से, उधर उधर बोलने की क्या जरूरत है, ना कोई सुनता है ना कुछ, उसे क्या लाभ। तो ये महाप्रभु जी से पूछो, महाप्रभु जी से पूछो, भक्ति विनोद ठाकुर जी से पूछो, अपने गोसाई लोगों से पूछो, जब आया भाई आपने क्यों किया, यदि समझ में नहीं आता है तो प्रश्न मत करो, उन्होंने किया है इसलिए हम करें, तभी तो बात ये होना चाहिए, इसको कहते हैं अनुभव, जो समझ में नहीं आती है तो महाजनों जैन गपक सफा बन था, और इसके करते करते मैंने ऐसा करने से क्या होगा थोड़ी देर के बाद में वो समझ में आ जाए, और पहले से ही बाइक काट कर देंगे तो वो समझ में नहीं आए, महाप्रभु को क्या करनी पड़ी थी कि सात दलों में विभक्त करा करके अपने भक्तों के साथ में सारा दिन धूप में और वर्षा में खड़े होकर के सवेरे से शाम तक कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत थी, भक्ति विनोद ठाकुर को गांव गांव में स्थापित करके वो नाम हर और ये सब क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी प्रभुपाद जी को छोटे छोटे तुम लोगों से भी छोटे छोटे ब्रह्मचारी सबको पढ़े लिखे करके गुरु महाराज जी जैसे लोगों को नगर संकीर्तन जी ने ऐसा क्यों बक्सा भिक्षा दे दिया, एक एक पैसा दो दो पैसा भिक्षा करने स्कूल भिक्षा की तरफ मत जाए, क्यों किया, वो लोग भविष्य दृष्टा है और सर्वज्ञ है, जीव का कल्याण कैसे होगा इसी जैसे, हरिदास ठाकुर महाप्रभु से पूछ रहे प्रभु ये जो लोग हैं जिनको एकदम श्रद्धा ही नहीं है, कुछ श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, भगवान का भगवान कुछ नहीं मानते, उनका कैसे कल्याण होगा, विशेष करके जो इसके घोर विरोधी हैं, ऐसे बहुत से धर्म वाले हैं जो इसके घोर विरोधी हैं, हम लोग मायापुर में जब जाते थे ना नगर संकीर्तन वो 16 वर्ष परिक्रमा एक सेकंड के लिए बंद नहीं हुई, हमको तो याद है मैं 7 दिन की कितनी दिन परिक्रमा हूं, तो मैं 7 दिन प्रारंभ से लेकर के शाम तक मैं मूल गायक हूँ, त्रिविक्रम महाराज जी और सब कहते हैं आपका गला खराब नहीं होता है, जैसे टूटा फूटा गला किंतु उसी से दिन भर करता रहता गला भी खराब नहीं होता, तो उसमें देखता था जहां जहां कोई मस्जिद है ना मस्जिद जहाँ जहाँ है वहाँ पर सब बंद कर देते
क्यों? आज के जैसे रास्ते में निकलने नहीं देते
अब तो अधिक कम है, पहले बंगाल में प्रोसेशन लेकर के चलना बड़ा भारी मुश्किल था, यहाँ यदि हो जाएगा ना तो बस एकदम बंद कर दे, बंद करके बंद करो बंद करो वही बाप आज देने लगते, नमाज हो रहा है नमाज हो रहा है, आगे बढ़ी नहीं पाता तब फिर बंद करके रोक सकता, अब तो बंद नहीं अब तो वो बांधता
मुझे बजा के जुड़ होते हैं,
तो ऐसे लोग बहुत विरोध करते हैं इसका नहीं करते हैं, यहाँ तक कि और तो बात क्या है, गुरु जी के साथ में हम लोग मंदिरों में वृंदावन में हम लोग गए तुम्हारा कौन मंदिर में हमको याद नहीं, बिहारी जी में राधा बल्लभ जी में और यहाँ के मदन मोहन जी मथुरा में जमुना के किनारे मदन मोहन का मंदिर, उनमें खोल मृदंग बजाते हुए कीर्तन करते हुए घुसने नहीं दिया, तो गुरु जी ने कहा कि यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, इसलिए बिहारी जी का मंदिर में फिर गुरु जी कभी नहीं गए, वो कीर्तन करते हैं कि इसमें चमड़ा है मृदंग में चमड़ा है, तो गुरु जी ने कहा गया ये शंख बजाने वाला उसमें तो आ रहा है ये क्यों रखा है ये क्यों बजाता है,
जो लोग उन लोगों में चमड़ा है
तो तुम रहता तुम में तो इस तरह से मान कह रहे हैं पशु पक्षी की पतंग है जो बोलते ना पा रहे जो बोल नहीं सकते हैं सुन सकते हैं
सुन ले सनाम तारा सब करे,
इसलिए उच्च संकीर्तन लगाते पड़ेगा प्रचार स्थिर चौर जीवर खंडाई दर्शन चैतन्य महाप्रभु अवतारे बने प्रेमामित्र बनने
संजीव
प्रेमता से पृथ्वी हो जाए, इसीलिए जो बोल नहीं सकते हैं सुन नहीं सकते हैं जो विरोध करते हैं जिनको थोड़ी सी सत्ता है जिसको विशेष सत्ता है जिसको विशेष सत्ता होगी ना कीर्तन करने समय में आकर के प्रसन्न से प्रणाम करेंगे चरण छुएंगे वहां महात्मा लोग कीर्तन करते हुए आ रहे हैं बड़े प्रेम के साथ में तुम्हारे साथ में स्वर मिलाएंगे
नाचने लगेंगे
नाचने भी लगेंगे आदर करेंगे दूध ग्लास में भर करके गर्म गर्म ले आएंगे आप लोग भी खूब आदर सम्मान करेंगे ऐसा भी और कुछ लोग हैं इसका खूब विरोध नहीं करेंगे किंतु सब प्राणियों के कल्याण के लिए महाप्रभु जी ने उच्च संकीर्तन का तय कर दिया स्थिर चौर जीवे महाप्रभु जी ने इस रथ यात्रा में कीर्तन को भी प्रधान बनाया कोई सुने न सुने कैसा भी है श्रद्धालु है या श्रद्धालु है कोई भी है अंदर तक कीर्तन की ध्वनि जाएगी कि नहीं, इसलिए हमारे गोस्वामी ने जो पथ अनुसरण किया हम उसमें चले समझने की चेष्टा भी करें, तो महाप्रभु जी की भावना की साधारण से साधारण व्यक्ति भी श्रद्धालु से लेकर और उन्नतम अधिकारी जैसे कि ये बतला रहे हैं अभी ये उन्नतम अधिकारी के लिए अभी तक जो संकीर्तन हुआ था वो किसके लिए साधारण की एक प्राचे ना साधारण लोगों संगे पड़े नाम संकीर्तन बहिरंग संगे पड़े
नाम
नाम संकीर्तन हम तरंग लैया करे ठीक है जाने आज तो भक्त समय मैंने साधारण भक्त
क्या बात
है बात करना था इसको तो इस तरह से कह रहे हैं उन्नत अधिकारियों के लिए वर्णन कर रहे हैं ये पूर्व जैसे कुरुक्षेत्र सौ गोपिया जैसे गोपिया दर्शन हमको मिला उसमें हमने बताया श्रीमद भागवत कितने एकासी एकासी या
तिरासी
और तिरासी में
बिरासी में कुरुक्षेत्र
तो उसमें मिलन के संबंध में बताया अब महाप्रभु के अंदर में हृदय में ये क्या भावना ये रथ यात्रा का प्रधान उद्देश्य ये वर्णन कर रहे हैं जगन्नाथ देखी प्रभु से भाव उठिल से भाव अविष्ट धुआ गवाई। जगन्नाथ को देख करके प्रभु के हृदय में ये भावना उठी, वह हमारे प्रियतम श्याम सुंदर अपने तो है राधा और ये जगन्नाथ देव जी हैं, ये हैं
श्याम सुंदर
नंदन श्याम सुंदर और हमारी ये जितनी भी हैं ये हमारी सब सहेलियां हैं। स्वरूप दानोदर राय रामानंद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर इत्यादि जितने भी हैं उसमें कीर्तन करने वाले और गायन और वादक और उसमें सबको देखा, जो आपको खेच करके जा रहे हैं उनको देखा गोपियों के रूप में और से भाव अविष्ट हैया धुआं गवर धुआं माने
एक
से तो परान वायु जहां
लागे मगन गहन
ये धुआं माने इसको कहते हैं धुआं। जैसे भजबुरे मना सिनंदन अभर चरणार बिंद रे भजबुरे मना इसके बाद बोला
श्री दुर्लभ
दुर्लभ मानव फिर अंतिम कवि श्रवण कीर्तन स्मरण उसी को बीच बीच में एक एक पद होता जाएगा फिर उसको दोहराया जाए। ऐसे ही सही तो पराना उसमें बड़े सूर ताल वैसे ये गा रहे हैं, हम लोग खोलते हैं इसका सूर ताल लाए मान वो नहीं आ रहा, लोग गाने की चेष्टा भी करते हैं इसको किंतु नहीं आ रहा। जैसे राधे जय जय मां दोनों सुंदर सुर से स्वरूप ये सब काम वगैरह इत्यादि संस्कृत के ये सब काम करते हैं, हम लोग धारणा नहीं कर सकते। अभी भी कभी ध्रुपद ध्रुपद सुनता है ना, कभी वृंदावन में जाते हैं अच्छे अच्छे लोग गाए सब साज लेकर के बैठ जाते हैं ऐसा से मन को मुग्ध कर देते हैं। तो कृष्ण के समय में या महाप्रभु के जो सुंदर सुंदर गंधर्व जैसे भी ये लोग गायक हुए कैसा सुंदर गायन करते हैं, विशेष करके हम लोगों ने देखा है इसमें वो पुस्तक है ना कौन सी जिसमें नरोत्तम ठाकुर भक्ति रत्नाकर उसमें कितना सूर ताल लय मान मृदंग का अलग से वीणा का अलग से ये सब चीजों का ये सब किया है। तो इस तरह से भाव अविष्ट यहाँ धुआं गवाई जाओ गोविंद ये भी दिए हैं, ये सब लोग सब प्रकार से जुड़े थे, क्या कीर्तन क्या संगीत क्या माने सब कोई भी शास्त्र बाकी नहीं था। जैसे कृष्ण थे ना 64 कला उनके भक्त लोग भी 64 कला पाए, रसोई बनाने में सिद्ध अवशेष राधा कृष्ण करे निवेदन अवशेष अवसर अंत में राधा जी कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि हमको भूल गई, तुम लोग ये समझती हो कि मैं तुम्हें संपूर्ण रूप से भूल गया क्योंकि इतने वर्षों तक मैंने कोई सुख दुख तुम्हारी नहीं दी, मेरा जैसा और कोई कृतज्ञ विश्व में नहीं है, ऐसा समझ रहे हैं मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। फिर राधा निवेदन उनको करता कैसे इनके बातचीत करने का ढंग है इसमें देखिए। राधा जी कह रहे हैं
पहले आपने 16,000 मुंशियों का विवाह करके और हमारे विरोह को भीड़ है ना, हमारे विरोह को विस्मित होने के लिए आपने विवाह करके और महाप्रेमी हो गए, अब आप महाप्रेमी बन गए, अरे आप हमें क्यों नहीं हुए देश पर रोटियां बने।
तो राधा जी कह रही है शेख में उसी अर्थ उसका अर्थ दे रहे साधारण जगह को मार कर सेतु में सेयानी से नौ संगम मैं भी वही हूं और तुम भी वही क्या है? मैं भी वही राधा
आप भी वही
वही कृष्ण है ब्रजविलास यहां पर नहीं आए वही कृष्ण हो मैं भी वही राधा हूं और जैसे ब्रज में हमारा नवीन प्रतिदिन नए नए संग होते थे कभी भी राधा जी ने या कृष्ण ने या गोपियों ने नहीं ये समझा आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं कि तीसरी बार मिल रहे हैं चौथी बार मिल रहे हैं ये कभी नहीं सोचा आज पहली बार ही हम उनका प्रतिदिन का आज पहली बार हम कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं आज पहली बार हम उनसे मिल रहे हैं गोपियां भी ऐसे सोच रही और कृष्ण भी ऐसे ही सोचते हैं आज पहली बार पूछते हैं तुम कौन हो प्रश्न करते हैं कृष्ण तुम कौन हो तो ये गोपियां क्या करती तुम इतना भी नहीं जानते जो तुम कौन हो आप हमें नहीं जानते हैं इस तरह से मालूम होता है जैसे वो कभी ये नहीं जानते कि पुरानी हमारी कोई मित्रता है सख्य भाव है एकदम नए मिलने में भी हमारे गोस्वामी ने भी ऐसा ही प्रथम मिलन अभी तो भास 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 कर प्रथम मिलन अभी तो भास श्वास भाष पहले मिलन इसमें भी स्मरण अभी संत धाम में तो धाम गंग पहला मिलन उनका सब जगह में भी यही दिख रहा है पहला मिलन उनका श्रीमद भागवत में भी गोपी गीत में हम देखते हैं पहला उनका पूर्वरा कृष्ण अभी मिले ही नहीं उनसे मिलने की तो बात क्या मिले ही नहीं है यही प्रेम का तथापि हमारा मौन हरे वृंदावन हम वही हैं आप भी वही हैं दोनों का मिलन भी वही है किंतु तथापि हमारा मन ये चाहता है कि हम दोनों वृंदावन में ही मिले यहाँ नहीं यहाँ पर संतुष्ट हम नहीं हो पा रहे हैं वृंदावन उदय कराओ अपन चरण अपने चरणों को वृंदावन में उदित करें माने क्या आप वृंदावन में चले हम वहां पर रहेंगे आप भी वहां पर चले और पहले जैसे रहते थे वैसे रहें क्या माने क्या नंदाबाद के घर में रहें रोज गलियों को चराने के लिए चले रोज गोवर्धन गिरिराज में भांडी बनने और जितने बनने हम लोग मिले यहाँ लोग हाथी घोड़ा रथक मनी तहा पुष्पारण्य भृंग पिक नाग सुनी यहाँ पर लोकारण्य लोकारण्य माने क्या लोक आरण्य अरण्य माने क्या वृक्ष जैसे कि होते हैं ना खने वृक्ष होते हैं पर्वत पहाड़ों में जंगलों में ऐसे यहाँ लोग ऐसे ठसा ठस जाकर रथ यात्रा में लगे हुए इसलिए यहाँ लोकारण्य और हाथी घोड़ा रथ ध्वनि है वृंदावन में जब कृष्ण का राष्ट्र इत्यादि हुआ तो कितने हाथियों का उल्लेख मिलता है या घोड़े किन आ रहे हैं गड्ढे देख रहे हैं कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं वहां पर मोर नाच रहे हैं तो कोयल भक रही है पपी है बोल रहे हैं सुख पक्षी सुख और सारी बड़ी मीठी मीठी में राधा कृष्ण के गुणों का गान कर रहे हैं बस यही यहाँ पर हाथी चिंघाड़ रहे हैं जैसे महाभारत युद्ध में महाभारत में सुना हुआ ना कैसे हाथी चिघाड़ते हैं और घोड़े और रथ के ध्वनि, और यहाँ पर लोकार्पण के बदले में कैसा है पुष्पा पुष्प भृंग पीक नाद सुनी भृंगों की झमका और पीक की रसाल वाणी मयूर का मनोहर नृत्य सारी और सुख का संवाद यहां पर सुनते हैं। सुख सारी का संवाद माने हमारे कृष्ण बड़े सुंदर हैं ये कहता है सुर। तो सारी कहती है कि जब तक वो हमारे हमारी राधा जी उनके बाएं तरफ में खड़ी है तभी तक वो सुंदर है, नहीं तो सुंदर नहीं। महाप्रभु जी सुन रहे हैं और इन दोनों में बातें चल रही है, महाप्रभु एकदम आविष्ट हो गए वृंदावन की ये बात।
सुख बोले हमारे कृष्ण गिरी हो गए सारी बोले हमारे रथा सत्य संचाले पार गए।
यहाँ राजवेश समय सब क्षत्रिय रथ यात्रा प्रसंग में ये बताया कि द्वारका में या कोई क्षेत्र में जितने वहां पर सम्मिलित हुए हैं यहाँ पर लोगों का सब जो भीड़ है लोगों की वो राजवेश कृष्ण का राजवेश और उनसे मिलने जो आ रहे हैं वो सभी राजवेश में सभी क्षत्रिय कृष्ण भी क्षत्रिय सबे संगे सबे सब क्षत्रिय सभी क्षत्रिय कौन क्षत्रिय जितने भी जदुवंशी हैं वो सब क्षत्रिय अर्जुन पांडव और वो सब क्षत्रिय जहां जहां उनके संबंधी हैं सब क्षत्रिय वेश यहाँ वेश संगे मुरली बन और यहाँ पर क्या है आपका भोग वेश है साथ साथ में मुरली बाधन वहां पर शंख चक्र गदा पद्म आपके हथियार हैं बड़े बड़े सुंदर सोने के मुकुट और यहाँ पर ये सब नहीं ब्रजे तुम्हार संगे जयी सुख स्वादन से सुख समुद्रे यहाँ नहीं एक कम ब्रज में तुम्हारे साथ रहने से जो जिस सुख का आस्वादन करती हैं या आप करते हैं अपने लिए अपना तो ये छिपा करके कर माने आपको जो सुख मिलेगा वृंदावन में मिलता है यहाँ उसका एक कण भी
नहीं मिलेगा
सुख समुद्र यहाँ नहीं एक कण वहां वृंदावन में सुख समुद्र भक्ति रसामृत सेवा रसामृत सिंधु प्रेम रसामृत सिंधु है और यहाँ पर वो भी है समुद्र मान्य के तो खारा मान्य अमृत नहीं पुन लीला कर वृंदावन बने तबे हमारे मनोकांक्षा है तो पुराने भगवती आचरी श्री राधिका बचन पूर्वे जा सूत्र मध्य करिया वर्णन जैसे तुम अब फिर वहां पर वृंदावन में चलो और तबे हमारे मनोकांक्षा है तो पुराने हमारी मनोकांक्षा वही पर पूर्ण होगी भागवत जी छे राधिका जी जैसे वहां पर कहा था राधिका जी का वचन क्या है राधिका जी का वचन आप उसी का चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट हो करके उसका श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं तबे से ही भावावेश प्रभु पढ़े आ श्लोक वो श्लोक सब पढ़ रहे हैं और उसके जो सहायक श्लोक है रायरक वो है स्वरूप दामोदर कहां से क्या क्या गया और उनकी भावों की पुष्टि कर रहे हैं शेष सब श्लोक के अर्थ नहीं पूछे लोग उन सब श्लोकों का अर्थ जो महाप्रभु जी कर रहे हैं अलंकार वस्तु वस्तु से या और सब जगहों से भागवत से कर रहे हैं कोई नहीं समझता स्वरूप गोसाई जाने ना करे अर्थ पा अर्थ तो जानते हैं किंतु अर्थ नहीं करते हैं शब्द बोल में कौन सुनेगा श्री रूप गोसाई को जैसे अर्थ प्रचार रूप गोसाई ने उस अर्थ को जगत में प्रकाश किया स्वरूप संग आप अर्थ करे आस्वादन नित्य मध्य से श्लोक करें पठन स्वरूप संग चैतन्य महाप्रभु जी उनके साथ में
उन अर्थों का साधन कैसे करते हैं, वो बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, श्लोक भी श्लोक बोल रहे हैं और उसका भाव आस्वादन करते हैं। नित्य मध्य से ही श्लोक करें ना पठन, महाप्रभु नित्य करते हुए इन श्लोक का बार बार पुनः पुनः पाठ करते हैं। आभूष्यते नलिलना पदारविन्दम् योगेश्वरैर्विचिन्तमपार्थबोधय संसारतोपतितो तरणावलम्ब्यम् केहं युषामपि मनःसुधियात् सदा। सदानंद में तो हमने कल इस या परसों इसकी व्याख्या की थी। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जी ने और स्वरूप दामोदर ने जैसे इस श्लोक का अर्थ स्वादन किया इसको बतला, इसी का नाम है व्याख्या। उन्होंने तो बंगला भाषा में तैयार हुई इसकी व्याख्या की है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि ने संस्कृत में ही उन लोगों का टीका इत्यादि के माध्यम से रसा स्वादन। विशेष करके ये भाष्य करने में और टीका करने में सिद्धस्त है विश्वनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हमारे रूप गोस्वामी के सनातन रघुनाथ गोस्वामी के समस्त ग्रंथों का ही उल्लेख इसका किया है। ग्रंथों की टीका है, यहाँ तक कि भागवत की टीका के साथ में गीता जैसे तत्व ग्रंथ की भी रसिक टीका है। यदि विश्वनाथ चक्रवर्ती ये लोग नहीं होते ना हमारे कविदास कविराज गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि, हमारे गोस्वामी ग्रंथों को कितना रसास्वाद से कोई नहीं समझ सकता। इन लोगों ने इस सबको रसास्वाद युक्त इसका अर्थ किया है। अन्य अन्य हृदय मान मोर मान वृंदावन मन बने कखड़ी जानी तहा तुम्हार चरण द्वार कह जदि उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। राधा जी कृष्ण से कह रहे अन्य हृदय मान, दूसरे लोगों का साधारण रूप में लोगों का हृदय होता है और मन उनका एक होता है, किंतु जैसे कैसे हमारा हृदय मन है, मन चंचल है, मन में भगवान का ध्यान आना बड़ा बड़ा कठिन है। जो भी लोग बड़ी कठिनता से कर्म शुभ कर्म के द्वारा वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करके वो भी निष्काम रूप में करके चित्त को निर्मल करने की चेष्टा करते, इसके बाद में जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो भक्ति के पुट को देकर के और भी चित्त को उसके अनुरूप बनाते हैं और तब कहीं जाकर के भक्ति योग के द्वारा कृष्ण के चरणों का विरूप ध्यान, कौन ध्यान करते हैं, ब्रह्मा प्रवृत्ति सनत सनन सनत मार्ग नाव और सब ध्यान करते हैं। यहां कहते हैं कि हमारा मन और हृदय एक दो नहीं है, हमारा हृदय ही मन है और मोर मन वृंदावन, हमारा मन क्या है वृंदावन, माने क्या
वृंदावन मन से
वृंदावन और हमारे मन में कोई भी अंतर, जैसे वृंदावन में कृष्ण उदित होकर के खेल क्रीड़ा इत्यादि करते हैं, माने कहां करते हैं, हमारे मन के धरातल पर ही कृष्ण ये करते हैं, इसलिए वृंदावन ही हमारा मन है। हम लोग का मन अभी वृंदावन नहीं है, वृंदावन की चिंता करने में भी नहीं हो पाता, जगत ही की चिंता आ जाती है, बनाने की बहुत से लोग चेष्टा भी करते हैं, हम लोग भी कुछ कुछ चेष्टा करते हैं किंतु बहुत ही कठिन। हम लोग के मन में गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा ये भी बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए कहते हैं अन्य हृदय मन, दूसरों का हृदय मन है किंतु हम लोगों का मन है वृंदावन। मने बने एक करिए, मने और बने ये अपने मन में और वृंदावन में एक हम समझ, इसलिए यदि आप हमारे मन में कहते हैं कि ध्यान करो और ध्यान के द्वारा तुम्हारे मन में हम आ जाएंगे। तो क्या करिए, आपको क्या करना होगा, कोई वृंदावन में पहुंचने से ही हमारे मन में ये हो जाएगा, इसलिए आप वृंदावन में पधारिए, हमारे मन में भी आपका आना हो जाए। नहीं समझा, समझा बाके क्या, हमारा मन वृंदावन है, हमारे मन में आने की आप चेष्टा मत कीजिए, हमारे मन में आने से आपको वृंदावन में आइए, अपने आप हमारे मन में आना ये कर। कहा तुम्हार पाप पद्म पाप गए कराहो यदि उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मान, ध्यान में हमारे आप आ जाएंगे, ये पूर्ण कृपा हमारी नहीं है, आप हमारे ऊपर नहीं, आप साक्षात रूप में आ जाए। साधारण ध्रुव जी के लिए भी देखा जाता है मन में उनके उदित हुए पहले नारायण सरस चक्र प्रदापक, फिर भगवान ने देखा इसके मन में उदित हुए हैं, वो बाहर आ गए, ध्रुव जी अब व्याकुल हो गए, फिर आंख खुला देखा
सामने
कुछ बोलना चाहते हैं, उन्होंने शंख स्पर्श कर, शंख स्पर्श करते ही
विश्वनाथ चटर्जी ने कहा कि जो भी लोग ध्यान करते हैं आपके चरण कमल हृदय में चिंतन करते हैं, हृदय में चिंतन करने से संसार से उतर, परंतु आपके चरण कमल के चिंतन करने से तो विरह रूपी समुद्र से तो उतर नहीं हो सकते, इसलिए आप हमारे हृदय के सामने प्रत्यक्ष होकर चले तो उससे हमारा विरह दूर हो जाए, अन्ना का ठीक है।
प्राणनाथ सुन मोर सत निवेदन, ब्रज आमार सदन कहाँ तुम्हार संग, ना पाइले ना रहे जीवन, ब्रज हमारा घर है, वहां पर आपके चरणों की प्राप्ति नहीं होने से, वहां हम लोगों के साथ में आपका मिलन नहीं होने से हम लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। पूर्वे उद्धव द्वारे एवे साक्षात हमारे जो वो ज्ञान परिलाल पाए तुम विदग्ध कृपा में जानो अमार हृदय मोरे कैसे कविते ना जुआ। आपने पहले उद्धव के द्वारा हमें संदेश दिया, क्या संदेश दिया,
ज्ञान को
दिया, ये उद्धव जी संदेश दे गए। उद्धव जी को कृष्ण ने कहा तुम समझाने बुझाने की चेष्टा करना, किंतु गोपियों को इससे संतना नहीं, उनको संतना होगी हमारे वचनों से, जैसा मैं कह रहा हूं ठीक वही शब्द वही बातें तुम जाकर के गोपियों से, इसे उनको संतना मिली। और कृष्ण ने उनको बहुत सी बातें बतलाई, उन्होंने अपने मन की झोली में सबको रख लिया और वहां पर गए। अब ये झोली में जो एक एक जो उनके लिए संदेश था, एक एक का अर्थ कृष्ण ने कहा ये जाकर के कहना, ये बात उद्धव जी ने उसको समझा अपने मन से, ये कृष्ण ये कह रहे, हो सकता है कि कृष्ण का उद्देश्य उसके द्वारा कुछ अलग और गोपियां उसके द्वारा
और दूसरा अर्थ का और
दूसरा अर्थ, इसलिए इसके सब जितने भी श्लोक हैं उद्धव संदेश के उनके तीन अर्थ होंगे, एक उद्धव जी का,
एक उद्धव पर
उद्धव जी जो समझ रहे हैं, एक जो कृष्ण समझ रहे हैं कृष्ण समझ करके दिया है, और एक गोपियां जो समझ रही हैं वही सर्वोत्तम उसका अर्थ, कृष्ण के भी अर्थ को काट करके सामंजस्य करके गोपियां उसको। तो यहां पर राधा जी कह रही हैं कि पूर्व जैसे उद्धव को उन्होंने संदेश दिया, देखो कृष्ण के साथ में कभी किसी भी जीव का विरह नहीं, योग नहीं। अब ये दार्शनिक का उद्धव ने इसको क्या समझा, उन्होंने अपना भाव कहा, सचमुच में जीव के साथ में भगवान का कोई भी योग कभी संभव नहीं है। जो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं वो अज्ञानी हैं, यह अज्ञान का दूर होने पर सर्वत्र ही भगवान को देखा जा सकता, इसलिए वो कहा गया जो मई सर्वंच पश्यति
क्या हुआ
प्रसुति
हाँ जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच वही पश्यति उसके लिए मैं कहीं भी दूर नहीं हूं यही उत्तम भागवत है। क्यों जैसे कोई चीज मिट्टी की बनी हुई है बर्तन कोई खड़ा है उसके अंग प्रत्यंग में सर्वत्र ही मिट्टी है। अच्छा घड़े में जो बनता है ना उसमें पानी है कि नहीं बिना पानी के वो ठहर नहीं सकता नहीं तो धूल हो जाएगी उसमें पानी भी है उसमें हवा भी है उसमें आग भी है आकाश ये चीजें नहीं रहने से कोई वस्तु नहीं हो सकती। जैसे ये समस्त चीजें क्षिति अपते वर्ण अथवा क्षित जल पाव गगन समीर है ये जितने भी चीजें हैं ये संसार की प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी रूप में जरूर मूल है इनसे ये अलग नहीं हो सकते। हमारा शरीर है इसमें मट्टी अधिक है आग भी है वायु भी है जल भी है सभी कुछ है इसलिए हम पृथ्वी को छोड़ करके नहीं जा सकते। जिनका हवा अधिक है शरीर में वो वायुमंडल में है जिनके शरीर में पानी अधिक है वो क्या करेंगे
पानी में रहेंगे
वो स्थल में नहीं रह सकते मछलियां इत्यादि मगर है और सब इनका शरीर ही बना है पानी के इसलिए वो लोग पानी में रहते हैं कोई इधर न रहते हैं कोई आकाश में रहते हैं हवा में तो हवा का शरीर। इसी तरह से देवताओं के शरीर में क्या चीज प्रधान है
अग्नि प्रधान
उसमें सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार की उनमें प्रधानता है किंतु उनमें भी स्थूल है
सूक्ष्म शरीर की प्रधान
उनमें वायु इत्यादि प्रधान है वो पृथ्वी पर नहीं आ सकते खड़े नहीं हो सकते
छाया भी नहीं पड़ता
उनकी छाया भी नहीं पड़ेगी उनसे भी अधिक ब्रह्मलोक में जाने पर क्या होगा वहां पर महत्त्व का ब्रह्मा का शरीर है महत्त्व होता नहीं सबसे पहला जो प्रकृति कारण है वो इसी तरह से यहाँ जितने भी ब्रह्मांड के अंदर में प्राणी है इनमें पांचों चीज कम बेसी रूप में वो सभी चीज अवस्थित इनसे ये इनका वियोग नहीं हो सकता है। वैसे ही भगवान का अंश जीव है गोपियां भी गोपियों के लिए उद्धव जी कर तुम भी भगवान के अंश हो तुम भी भगवान से ही आए हो बिना भगवान के तुम हो नहीं सकती तुम्हारे अंतर में बाहर में भीतर में अणु अणु में वो प्रभु है यदि वो न रहे तो तुम्हारी सत्ता नहीं रहेगी इसलिए तुम्हारे साथ में कृष्ण का वियोग नहीं और जो तुम समझ रही हो जो वियोग है ये किस लिए अज्ञानता के वजह से तुम्हारे अंदर में अज्ञानता है इसलिए उद्धव जी इसी चीज को समझाने के लिए ब्रज में गए किंतु गोपियां गोपियों का विचार कहां जिनसे लाभ गुना ऊंचा है उन्होंने इसको स्पर्श ही नहीं करके कहां ऊपर चली गई उद्धव जी देखते रह गए जब मैं कहा था वो कहा
बोले इस ब्रह्म ज्ञान की पेटरी मुद्रा में भेजा ना वहां उनके भाई देंगे उनको सुनाया
मथुरा ने ये बतला रहे हैं निराकार को उड़ा दिया और सब चीज को उड़ा दिया। फिर उन्होंने कहा है वियो किंतु सर्वांश रूप में नहीं है कृष्ण का अर्थ क्या है गोपियों का अर्थ क्या है गोपियों ने क्या समझा इसको सर्व सब प्रकार से वियोग नहीं है पहले कृष्ण ने क्या समझा भाई मैं सब समय उनके साथ ही रहता हूं किंतु वियोग के कारण उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो समझ नहीं पाती हैं इसलिए उनको ऐसा और गोपियों ने किस रूप में समझा वो दूसरे रूप में समझे। तो यहां जब कभी प्रसंग आया था उसमें हम लोग टीका में भी सुना चल रही थी ठाकुर जी क्या है इसको हम लोग वर्णन करके बहुत ही सुंदर प्रसंग है हम लोग यह रथ यात्रा का होने के बाद में भजन रहस्य का थोड़ा सा बात करके फिर हम लोग चलेंगे भागवत नहीं दशम स्कंध के पहले पहले से दशम स्कंद के पहले अध्याय से लेकर के हम लोग विचार करेंगे। तो पूर्व उद्धव के द्वारा ये सब संदेश और पीछे बलदेव के द्वारा भी उसी संदेश को दिया, गोपियों के साथ में हमारा वियोग नहीं, इसलिए गोपियों को ध्यान करना चाहिए। ध्यान के द्वारा जहां भी होगा दूध सर्वत्र है, दूध में सर्वत्र भी है किंतु मंथन करने से निकला है। वैसे सर्वत्र ही भगवान है, दिखते नहीं है किंतु साधन के द्वारा ध्यान के द्वारा वो, इसका मतलब क्या, साक्षात वो नहीं दिखते। और गोपियां चाहती हैं साक्षात दर्शन, कहते हैं कि आप विदग्ध हैं, उद्धव के द्वारा ऐसा संदेश क्यों दिया, आप विदग्ध शिरोमणि, विदग्ध माने क्या, रसिक,
रसिक चो,
आप रसिक चो, इसलिए गोपियों के द्वारा उद्धव के द्वारा ऐसा संदेश दे पाया। हमें चिढ़ाने के लिए और हमारा मनोभाव अवगत होने के लिए आपने ऐसा किया, साथ ही साथ में कृपामय भी है, जानो हमारे हृदय, आप मेरे हृदय को जानते हैं, मुझे ऐसे परिचय नहीं हुआ, हम लोग से ऐसा कहना आपकी शोभा नहीं देती, क्यों उसी को कर रहे हैं, क्यों उसका उत्तर दे रहे हैं, यहाँ चित्तकारी तुमा हईते विषय चाहे लगाईते जत्न करी ना पारी कारी बारे तबे ध्यान शिक्षा करा हो लोग हसाइया मारो, स्थान स्थान ना करो विचार। आपने उद्धव के द्वारा कहा और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मेरा ध्यान करना, ध्यान में मैं प्रकट हो जाऊंगा हमारे हृदय में, उसके लिए कह रहे हैं कि आपको कहाँ किसको कैसा उपदेश करना चाहिए, आप विदग्ध हैं इसलिए ध्यान बुझ करके भी वैसा हमको बतला रहे, नहीं देना चाहिए आपको ऐसा उपदेश, तभी फिर भी हमको कर रहे हैं। देखो हम तो चाहते हैं कि आपके आपसे अपने चित्त को निकाल करके विषय में हम अपने चित्त को लगाना चाहती हैं जिससे कि हम आपको भूल सकें। जो लोग ध्यान करते हैं विषयों को हटा करके मन से नाइकी नाइकी करते हुए ले जाते हैं और कहलाते हैं भगवान के चरण कमलों का ध्यान, जहां ध्यान करने पर आपके घर चित्त आ जाता है, कहां संसार में आ जाता है, विषय में आ जाता है, और हम लोग आपको भूलने के लिए चेष्टा करते हैं आपका आपके चरणों से अपना अपना मन हटा करके विषय में ले आए। विषय में क्यों, विषय लगाने से आप भूल जाएंगे, किंतु हम लोग नहीं कर पाए, इसलिए हम लोगों को ऐसा उपदेश देना चाहिए। नहीं गोपी जोगेश्वर, गोपियां जोगेश्वर नहीं है, पद कमल तुम्हार ध्यान करी पाई वे संतोष, आपके चरण कमलों का ध्यान करके वो संतोष पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग तो तुम्हें वृंदावन में ले जाना चाहती हैं और आमने सामने सेवा वाक्य प्रेम का आलाप और ये सब करके आपको सुखी कराना चाहती हैं और हम लोग भी सुखी रहना चाहते हैं, हम लोग ध्यान से संतुष्ट नहीं होने वाले, ब्रह्मा जी हो जाएंगे, इसलिए करें जोगेश्वर लोगों के लिए संभव। कृष्ण का उन्होंने नारायण का ध्यान किया, तप तप की आवाज हुई और उन्होंने तपस्या की, तपस्या करने के बाद में उनके अंदर में ध्यान लगाया और ध्यान में देखा गर्भोदशाई विष्णु को, अपने आराध्य को देखा, किस रूप में देखा, हिरण्य
गर्भ
हिरण्य गर्भ उसके रूप में अपने आराध्य को, और उन्होंने अपना तत्व बतलाया, जथा हम जथा भाव जद रूप पूर्ण कर
विज्ञान
रकम जते और उसमें संतुष्ट होकर के भगवान अंतर ध्यान होकर के चले गए और इनको सब बतला दिया, चले गोपियां कहती हम इसे संतुष्ट नहीं है। नारद जी को भी ध्यान में दिया, प्रहलाद महाराज जी को ध्यान में दिया,
वो लोग संतुष्ट हो गए। शंकर जी को भी ध्यान में, सब समय शंकर जी क्या करते हैं, ध्यान लगाए, उनको संतोष है, हम लोगों को इसमें संतोष नहीं, हमें क्या संतोष होगा। वृंदावन में हम पानी भरने के लिए जाती हैं यमुना में, उस समय हमारी उस घड़े को उठा करके हमारे से ऊपर चला गया। यदि हम क्लांत हो गई हैं तो हमारी सेवा कर दीजिए। इस तरह से हम चाहते हैं साक्षात रूप में आपसे हमारा मिलन हो। कुमार बात के परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी सुनी गोपी गोपी आरो बाहे रहो। तुम्हारे वाक्य में परिपाटी है, परिपाटी माने क्या, कितने तरह के अर्थ गुण अर्थ सब छिपे हुए। तुम लोग चली जाओ, क्या कहते श्लोक संस्कृत में क्या है, जान दो पति जात गृहा
रजन
सुमध्यमा। तुम लोग यहाँ पर ठहरो मत, तुम लोग अपने घरों में लौटो। गोपी करेंगे इसमें आपके बाकी अच्छे बतलाओ तो इसका गोपियां करेंगे इसका सीधा तो यही है, तुम लोग घर को लौट जाओ। मैंने कब ये कहा कि घर को लौट जाओ, माँ पति जाओ यहाँ पर अघोर सत्य
रजनी अघोर रूप
अघोर अघोर मैंने
सुंदर जितना
पूर्ण चांदनी रात है, घोर रात्रि की वहां कोई प्रसंग ही नहीं है। रात्रि कैसे थी, चांदनी रात, तो वहां पर घोर कैसे हो गई निशा
अघोर।
इसलिए मैंने तो वो नहीं कहा, मैंने तो कहा अघोर, पहले से वो और इसमें मिला हुआ है अघोर सत्य। अघोर सत्य मैंने घोर सत्य मैंने होता है सिंह, यहाँ पर सिंह बालू नहीं, यहाँ पर तो ही रॉयल है, सुख है, सारी है, मयूर है, ये सब हिरणे हैं, इनसे डरने के ये तो इसके लिए सहायक है हमारी क्रीड़ा में। इसलिए मैंने कभी नहीं कहा कि तुम लोग चली जाओ। इसी तरह से यहाँ भी कह रहे हैं उद्धव कुमार आपने जो संदेश दिया है उसमें भी आपके वाक्य की परिपाटी है, आप जो क्या कहना चाहते हैं ये ठीक से मालूम नहीं होता। मोरे ऐसे बढ़ते ना जुआ चित्तकारी तुम नह गोपी जोगेश्वर पद कमल तुम्हार ध्यान कर पाइबे संतोष। तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी, कुटी नाटी मैंने क्या, कभी कहते हैं इसमें अ लगा गया है, कभी कहते हैं इसे अ नहीं है, अगर तुम चली जाओ कभी कहेंगे जैसे मत जाओ, कभी यहीं पर कहेंगे ठहरो, कहेंगे ऐसे नहीं अभी चले जाओ पतियों की सेवा करो, फिर कहते हैं पतियों की सेवा करो, कहते हैं मैं ही तो जगत का पति हूँ, मेरा तो एक तो पति नहीं, पतियों की सेवा करो आगे सुनी गोपी आरोपा जिससे सुन करके गोपियों को होश हो जाता है। आज यही तक
बहुत दिनों के बाद में कुरुक्षेत्र में लोग कृष्ण से गोप और गोपियां निजवासी लोग मिले, सबसे मिलने के बाद में गोपियों से मिले, गोपियों से कुशल संवाद होने पर कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं, तुम लोगों ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा किंतु मैं ऋण को नहीं चुका सकता। तुम लोग हमारे प्रति कोई द्वेष भाव न करो, तुम प्रिया हो हम ये तुम हृदय, और उन्होंने उनको गौर से ज्ञान के उपदेश सुनाए, तत्व ज्ञान समझाए, जीवों के मैं तो भगवान हूं,
मैं सर्वत्र में मेरा ध्यान करना चाहिए तुम लोगों को, यथाकथन में हमारा तुमसे कोई वियोग नहीं है। गोपियों का इससे विरह बढ़ गया तो उसने अपनी झोली से और कोई चीज निकाल करके कहीं वियोग है थोड़ा सा, उसने कहा वियोग है किंतु उतना वियोग नहीं, सर्वत्र भाव है वियोग में, तो गोपियों का इससे भी और विरोह बढ़ गया। तब उन्होंने कृष्ण ने कहा था देखो मैं तो बीच में मिलता रहता हूं और उसका उदाहरण दिया, देखो वो गोपियां जो हैं उनके पतियों ने उनको घर में बंद कर दिया था, इनसे पूछ लेना वो बतलाएंगे, उन पर उसने ये बतलाएंगे मैं कैसे उनके यहाँ सबसे पहले आकर मिला और उनको राष्ट्रपति में प्रवेश करा, इसलिए मेरा हम मेरा मिलना केवल स्तुति और स्वप्न नहीं है तथापि नहीं मिलता, इसको तुम लोग विश्वास करो। इसी तरह से विरह जितना बढ़ता जाता है अपनी झोली से नए नए कृष्ण के संदेश दे रहे अंतरंग मैंने यही बताया भक्ति ही भूताना
मई भक्ति
मई भक्ति ही भूताना अमृत गाय भगवते विश्वाजता समस्य और भवती हमारा, इससे गोपियां कुछ प्रसन्न हुई और कृष्ण को वृंदावन में चलने के लिए करें। वही श्रीमती राधिका जी कह रहे हैं कल से हम लोगों ने इसको आरंभ किया है, गृह स्मृति नहीं किया आप कहते हैं कि हमारा ध्यान जिनको देह की स्मृति नहीं है उसका संसार खूब कहा, संसार में पड़े हुए लोगों के लिए भगवान का ध्यान करना उनके चरण कमलों का ध्यान करना कुएं से निकलने के बराबर, वो गौसागर को पार करने के लिए भगवान का चरण कमलों कमल एक नौका के समान है। गोपियां कहती ये उपदेश हमारे लिए कर रहे हैं कि आप तुम लोग मेरी मेरा स्मरण करना और मेरा चरणों का सहारा लेना, ये हम लोगों के लिए उपदेश दे रहे हैं, हम तो आपको भूल जाना चाहती हैं सब प्रकार से और विश्व में मन लगाना चाहते हैं, ये तो आप जोगेश्वरों को आपकी उपदेश दें, हम लोगों के लिए उपदेश ठीक नहीं, देश में की नहीं जा रहा संसार को कहा जिनको सब देश की स्मृति नहीं है मैं हूं या नहीं हूं, सब समय आपकी चिंता में लगी रहती है, बराबर हमारा मन आदि का स्मरण करता है कि संसार को हमारा संसार को किसको कहते हैं, संसार में रचपच करके और उसी में भूल जाना भगवान का स्मरण करने का समय न मिले, और भगवान का स्मरण करते हैं जब चिंतन करते हैं तो संसार की बातें सब याद आ जाए, यही साधकों में अधिकतर होता है, हम लोगों में भी यही बात है, सब समय विषयों की संसार की बात, खाने पीने इधर उधर बनने क्या करना है इस संसार में उसके लिए भगवान के लिए स्मरण नहीं, तो कहते हैं कि उन लोगों को संसार, हम लोगों को ऐसा संसारी नहीं, हम बचपन से ही बस आपकी सेवा आपकी चिंतन कर रहे हैं, अभी भी हम यही कर देश में संसार को कहां था, इसका उदाहरण क्या है प्रमाण क्या है कि जिनको देश की स्मृति नहीं है उधर भी गए और देखा क्या सोने की पुतली सी कमल की पखुड़ियों पर सोई हुई और प्राण है या नहीं कुछ पता नहीं, उद्धव आए हैं कि नहीं ये भी पता नहीं, एक भाव को देखकर के बातचीत कर रहे हैं, उनको दुख समझ रहे हैं, कभी कभी तमाम दुख को कृष्ण समझ रहे हैं, कभी कभी मेघ को ही इस कृष्ण समझ लेते हैं, अपने केश को बांध करके कपड़े में सफेद में उसको रखती है, क्यों उसी को देखकर के कृष्ण का स्मरण आ जाता है, काला है इस तरह से उनके देव की स्मृति कभी नहीं होती। कामित है ना चाहे उद्धार, संसारकुट में जो पड़ी हुई है गोपियां आप समझते हैं उनका संसारकुट नहीं है और इससे वो उद्धार करने के लिए कोई भी चेष्टा नहीं करते। भक्त लोग ये नहीं चाहते हम दो लोग बैकुंठ में चले जाएं, जानवर हमारा बंद हो जाए, ये नहीं, ये कौन चाहता है? साधारण अभी कनिष्ठ अधिकारी चाहते हैं, मध्यम अधिकारी ये नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? कैसे सर्वोत्तम कृष्ण की सेवा पास हो, गोपियों की सेवा हम पार्षद है बस किसी की चिंता करते, चाहे लाख जन्म लेना पड़े, भाव की पुष्टि हो और धीरे 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 हम लोग उसी के तरफ। वैष्णव का संग चाहते हैं, रसिक तत्व वैष्णव का संग चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। नाम में क्रमशः प्रीति हो, हरिकथा में रुचि हो, ये सब चाहते हैं, चाहे लाख जन्म लेना पड़े कोई चिंता की बात नहीं, नाम लेना ही भगवान का साक्षात्कार है। इसलिए वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं मायावादियों की तरह में जो हम लोग संसार का अवागमन हमारा बन गया, उससे क्या होगा? हरिभजन नहीं होगा। यदि आप चाहें हम लोग तो हम लोगों का बंद हो जाएगा संसार में, किंतु हम लोग कभी चाहेंगे नहीं, क्यों? भाव की पुष्टि नहीं। हम मानिए कि अभी अनर्थग्रस्त श्रद्धा की कोटि में अभी निष्ठा संपन्न जीव नहीं, यदि आज हम यदि हम जन्म मरण बंद हो जाएगा तो वही निष्ठा के कोटि में ही हम लोग और आगे इसलिए दर्शन लोग नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जन्म जन्म में जहां भी हमारा जन्म नाथ जोनि सहस्त्रेशु जेश जेशु भजन तेश तेश अचला भक्ति भक्ति दास को सदा सुन रहे जा पृथ्वी विवेकानंद अभिषेकानंद विशेष अनुपायिनी तवाम अनुसरता सामी हृदय मां हृदय सरस्वती। ऐसा जहां जहां भी जन्म हो यहां तक की पतंग होकर के भी रहे किंतु वैष्णवों का समय यहां पर हरि कथा सुनने के लिए भवस ब्रह्मा जी कहते हैं भवे अत्र अत्र माने वृंदावन है और यदि वृंदावन में संभव नहीं अन्यत्र भी कहीं भी भवे अत्र वानत तू वा चिरश्चन। अरे मनुष्य जन्म न हो पुरुष न हो स्त्री न हो तो तिरश्चन तिरश्चन माने क्या तिरजक किसको कहते हैं पशु पक्षी की पत्नी नहीं ले सकते इसमें भी हो जाए किंतु हो क्या
जनान की
भवत जनानाम निषेधे तो पाप ऐसे वैष्णव का संग हो जाए रसिक वैष्णव का एक उनके चरण कमलों की सेवा करते हुए आपकी चरण कमलों की सेवा मिल जाए ऐसे वैष्णव का संग जन्म जन्मांतर में जहां करें चाहे नरक में हो
आपके जन्म में ये
किन ब्रह्म जन्म में आश कितना सुंदर सुंदर ये चैतन्य चैतामृत में ये सफल है अपूर्व ग्रंथ है। यदि सचमुच में एक लाइन को भी अपने जीवन में उतार लिया तो बस सब कुछ सिद्धांत की खान इसलिए कहती है गोपियां इसके लिए उद्धार की आवश्यकता नहीं समझती हैं, चेष्टा नहीं करती हैं। विरह समुद्र जले कांत मिंगी लिए गोपी बने निहतार गोपियां विरह के समुद्र में अथा समुद्र आर पार रही समुद्र विरह का और उसमें काम रूपी त्रिमिंगल उन्हें निगल रहा। त्रिमिंगल माने बड़े बड़े मछलियों को भी जो खा जाते हैं मगर तगर सबको खा जाएंगे बड़े बड़े जहाजों को उलट पुलट दे
तिमिंगल गिलने वाला तिमिंगल तिमी मांस को भी गिलने वाला बच्चा को बोले
तो उनको भी निकल जाने वाला
गिलने वाला
वो क्या चीज है काम काम माने क्या
बस
आपकी प्रीति हम कैसे करें आपको खुशी प्रसन्न कैसे करें ये काम प्रेम रूपी काम यह नहीं निकल रहा है, आप दुखी हमारे लिए कह नहीं रही है, किंतु भीतर की भावना हमारे सेवा के बिना आप दुखी, यही हमारा काम है, आपकी सेवा करके आपको कैसे प्रसन्न कर सकें। गोपी बनने का गोपियों को अपनी सेवा का अधिकार दे करके आप प्रसन्न रहे, हम भी उससे प्रसन्न रहे, बस गोपियां यही चाहती है और कुछ नहीं चाहते। उद्धव जी ने कहा कि गोपियों से मैं जरा कृष्ण को कहूंगा कि आप आ जाइए जल्दी से, ये कर दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं ये मत कहना, क्यों यदि यहां आई है और वहां आने का उनको दुख रहेगा कि उसको छोड़कर कम आ रहे हैं, कम ऐसा नहीं, अपने सुख के लिए कृष्ण को हमको जरूरत नहीं, इतना त्याग किसी में होना आवश्यक, लक्ष्मी जी को भी नहीं, रुक्मणी सत्यभामा जी को भी नहीं, इतना बड़ा त्याग। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप मथुरा और वृंदावन द्वारका छोड़कर के यहां आप वहीं पर सुखे हैं, हम भूलते 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 मर जाएंगे जीवन, वो हमको मंजूर है। वृंदावन गोवर्धन जमुना प्रदूवन से कुंज राशा दी कलीगर से ब्रज जनवन माता पिता बंधुवन बड़ चित्र के मने एक पास वो आप सब कुछ भूल गए, हम लोग को भूल गए, ये कोई बड़ी भारी बात, क्योंकि हमसे तो आपका विवाह कोई संबंध था नहीं, मानो तो मानो संबंध है नहीं तो नहीं है, किंतु माता से और पिता से आपका जन्म हुआ है, रक्तमान सब आपका उसी से बना है, बड़े विचित्र की बात है, बड़ी विचित्र बात है, आप उन लोगों को भी भूल गए। वृंदावन में जहां आपका लालन पालन हुआ यहां पर आपने छत्र रहने की गोवर्धन जमुना कुली और से कुंज राशा दे कर लीला, आप कितने प्रसन्न इन सब लीलाओं से रहते वहां जाकर के। प्रजे जनगण माता पिता बंधुगण ये सब बड़े विचित्र बात है कि आप उन सबको भूल गए, कैसे आप भूल गए, क्यों भूल गए, एक बार देखने भी नहीं आए कि बछड़े मर गए कि नहीं, आपकी प्यारी बछड़ियां वो जीवित हैं कि मर गए, जब कुछ देखो माता पिता की क्या स्थिति है ये देखने के लिए नहीं है। अरे संसारी लोग भी तो अपने माता पिता का आदर करते हैं, आप उसको भी माता पिता को भी भूल गए, बड़ी विचित्र बात है। और ये आपका दोष नहीं, दोष किसका है, हमारा ही कर्म का दोष है। आप तो कैसे हैं, हम लोग को धिक्कार है, ये कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हम में हुई है जो हमको छोड़ करके आप चले, आपकी त्रुटि नहीं है, आप कैसे हैं, आप तो बड़े गुणी हैं, विदर्भ विदर्भ माने रसिक चतुर्गुण बुद्धिमान मृदु बड़े कोमल है, आपका हृदय मक्खन से भी कोमल है, सदगुण जितने प्रकार के सदगुण है आप में है, सबसे अधिक आप बड़े सुशील हैं, सुशील मैंने क्या
सुंदर चरित्र,
बड़े सुशील है, बचपन से ही आपकी सुशीलता दिख रही है, कभी आपने चोरी नहीं, कभी झूठ नहीं बोला, कभी आपने किसी बच्चे को छेड़ा नहीं, लड़कियों से कोई भी को भी नहीं छोड़ा, ऐसे आप सुशील हैं। स्निग्ध स्निग्ध माने दूसरे का थोड़ा सा भी कष्ट देकर के पिघल जाते हैं, यह स्निग्ध
कोमल स्वभाव,
कोमल स्वभाव वाले बड़े करुण हैं, ऐसे करुण हैं कि हजारों लाखों लोग जो रो रहे हैं आपके लिए, बिलख बिलख करके रो रहे हैं, आप ऐसे करुणा के निधान हैं, करुणा के लिए ही शायद आपने दर्शन नहीं दिया, इतने आप बड़े करुण
हैं।
ये कैसे कह रहे हैं, रोष में भर करके कह रहे हैं, ये सब उनका विदग्ध चतुर, आप बड़े विदग्ध बनते हैं, ये विदग्ध का उदाहरण है,
समय
ये
रोष में क्या
बड़े आप रसिक हैं, आप बड़े मृदु कोमल हैं, आपका ये हृदय अभी तक द्रवित नहीं हो गया है। आप कहते हैं शास्त्रों में भी वर्णन किया गया बड़े मृदु और सद्गुणों की भंडार है। सद्गुण माने एक सत्य बोलना भी, आप तो कह दे जी परसों आऊंगा, कल नहीं तो परसों, अभी परसों आया ही नहीं,
परसों भी
सुशील, यही सुशीलता है, स्निग्ध, आपका हृदय द्रवित नहीं हो गया हम लोगों का दुख देकर, करुण, ये सब को याद आपको नहीं होती, आपको तनिक भी करुणा, माता पिता अंधे हो गए, केवल हार बचा उनके शरीर में, घर में रसोई नहीं होती और प्रदीप नहीं जलता, अभी जो गति मंथन इत्यादि वो सब कुछ खत्म हो गया, ये सब आप देख करके आपकी हृदय तनिक भी करुण से द्रवित नहीं हो जाता, तुम्ही तुम्हारा ही दोषाभास, नहीं हमने ये गलती कहा, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने तो दोष का आभास, दोष की बात क्या, दोष का आभास भी नहीं, तो भाई ये तुम्हार मां नहीं स्मरे प्रतिजन से हमारा गुण दैव, आपका मन जो वृंदावन को स्मरण नहीं करता है, लोगों को स्मरण नहीं करता है, आप जो वृंदावन का स्मरण नहीं करते हैं, इसमें आपका तो दोषाभास भी नहीं होते, ये सब किसकी किसका दुर्दैव है, हमारे कर्मों का दुर्दैव है। जैसे साधारण लोग भी दोष किसका देते हैं,
उसको
दैव का, यदि कोई काम नहीं होता ना, दैव हमारा विरोधी है, हमारा दुर्दैव है,
दैव प्रतिकूल, विधि बाम,
विधि बाम, हमारे कर्म ही ऐसे हैं,
काल के कर्म ही,
काल भी हमारा ऐसा चल रहा है, भगवान का इसमें दोष है, तुम्हारा हमारा कोई दोष नहीं है, मनु इसी तरह से संसारिक बातों की भांति ये भी करें, पहले तुमने कह दिया कृष्ण के लिए ऐसा क्यों, और फिर करेंगे इसमें आपका दोष, नंद बाबा भी ऐसे ही करते हैं, यशोदा मैया भी ऐसे ही करते हैं, सभी ब्रजवासी लोग ऐसा ही करते हैं, नंद बाबा कहते हैं जब ठाकुर ने जैसा वो भूमि है तो हमारा बेटे के रूप में नजर कैसे आ गया, यदि आदमी गया और हमारे पास में नहीं रहा इसका उसमें दोष नहीं है, क्योंकि उसके गुण के समान उसका पिता और माता भी तो ऐसे ही बुरी होनी चाहिए, तो हमारे अंदर में वो गुण ही नहीं है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं रह सका, जहां उसको अधिक स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है, माता पिता गुणी है वहां पर चला गया, इसमें उसका दोष नहीं, दोष है हमारा जब उस लड़के को संतुष्ट नहीं रह सके, उसको उतना प्रेम नहीं दे सके जो उसके लिए उचित था, इसलिए वो हमको छोड़कर इसी के लिए उन्होंने बतलाया जो पिता तो एक ही थे महाराज दशरथ, जो बेटे के जाने पर बस हराम हराम दो बार तीसरा बार में आया ही रहा था और बस जीवन की लीला समाप्त हो गई, पिता ऐसा, हम लोग अभी तक मर नहीं गए तो पिता कहां अभी कहना नहीं, इसलिए से हमारा दुर्दैव विलास, यह हमारे दुर्दैव का विलास है, जैसे प्रेम का विलास होता है ना, तो ऐसा ये दुख का दुर्दैव का ये विलास, क्या अभी तक हम मर नहीं गए, कितने दिन हो गए खाया नहीं कभी नहीं मर रही, दिन रात नए नए दुख आ रहे हैं, कभी उसको सहते हुए भी अभी मर नहीं गई, ना कन्या मनी दुख देखी ब्रजेश्वरी दुख, ब्रज ने हृदय हृदय किवा मारो ब्रजवासी, किया हो दिया हो ब्रजवासी, क्यों जी आओ दुख सही भाई नागमी आप अनुख हम अपने दुख के लिए नहीं रोती, हम किसके लिए रोती हैं? बोला मैया की तरफ में देखो तो ब्रजेश्वरी, अथवा ब्रजेश्वर कौन है? नंद महाराज है। और दूसरा नंबर पर कृष्ण को यदि ब्रजेश्वर मान लो तो ब्रजेश्वरी कौन है? कहने का इनका ये तात्पर्य है, ब्रजेश्वरी से ऊपर से ठक्कर के माता के लिए दिखला करके भी ब्रजेश्वरी का यथा तात्पर्य ले आ रहे हैं। ये यशोदा मैया के दुख से अधिक दुखी है ना राधा जी के दुख से दुखी?
राधा जी के दुख से अधिक
नागमी अपन ही दुख, हम अपना दुख ये गोपियां कर रही हैं, अपना दुख नहीं। ये गोपियां संतना दे रही हैं मान लिया कि श्रीमती जी रो मत आ जाएंगे, ऐसा ही होता है संसार में, ऐसे ही दुख व्यक्ति को ऐसे ही तो संतना देते हैं भगवान की ऐसे इच्छा, इसके ऊपर में और कोई बात नहीं। तरह तरह की बातों से किसी को हम संतना देते हैं। अच्छा जो संतना देने वाला है और जिसको संतना दिया जा रहा है दोनों एक स्टेज में है कि नहीं है? संतना देने वाला उतना गहरे दुख में नहीं है, केवल इसके ऊपर ही आंखों को आंसू या कुछ और चीजों को देख करके कुछ समझ रहा है, इसलिए उसको होश आवास है, संतना ज्ञान भी है किंतु उनको ज्ञान नहीं है, नहीं तो वो भी संतना नहीं देते। जैसे वो हिरण्यकश्यपु कह रहा है अपने भाई के मृत्यु पर घर वालों को समझा रहे, सुजग नामक एक राजा वो मर गए, अथवा पिंतासुर के चित्रकेतु महाराज का लड़का मर गया, लड़का मर गया, अब उनके घर में कोई सांत्वना देने वाला रहा ही नहीं, क्यों? वो सभी लोग तब पीछे से आए
अंगिरा मारो,
अंगिरा जिसको शोक नहीं था इसलिए वो समझा रहे हैं, जिसको शोक खुद ही सुख है वो क्या समझाएगा दूसरों को? इसलिए यहाँ पर ब्रजवासियों को गोपियों को कुछ दुख तो है किंतु श्रीमती जी को जितना दुख है उतना दुख नहीं, इसलिए वो कह रही है नागमी अपनी दुख। अब गोपियों को तो कुछ खाने के लिए चाहिए तो ब्रजेश्वरी की उपमा दे, तुम हमको भूल जाओ कोई बात नहीं, विवाह शादी कम से हुई नहीं, अच्छा मानो तो संबंध है, तो संबंध नहीं है उठा हट गया खत्म हो गया, किंतु ब्रजेश्वरी के साथ में तुम्हारा जो पुत्र और माता का जो संबंध है यह तुम्हें होने से भी भूल जाएगा कि नहीं? तुम कहो कि मैं उनका बेटा नहीं हूं, हो जाएगा कहने से? ये तो होगा नहीं, संभव। इसीलिए कहते हैं ब्रजेश्वरी का हम लोग देखते हैं।